Hare Krishna, this lecture on the conversation of Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami given on 21st October 2017 at Suktal Ashram by myself Prashant Mukund Das.
Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Grantara Srimad Bhagavatam ki.
तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हम एक ऐसे स्थान पे हैं जिस स्थान पर पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। हरी बोल। आप लोगों को दुख हो रहा है? वैसा लग रहा है दुखी है, मार मार के लाया गया है। यहाँ पर आने के बाद कैसा अनुभव होना चाहिए? आप लोग एक पिक्चर देखेंगे, अगर ये इस्कॉन की प्रभुपाद जी की पुस्तक है, इस पुस्तक में ये देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, ये दिख रहा है पिक्चर, इसमें ये ऊपर बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये स्थान जहाँ पे हम बैठे हैं, इसके नीचे परीक्षित महाराज आप लोग हैं इसके अंदर, और ये पेड़ जो उसके पीछे दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग, ये पेड़ यही पेड़ है, वट वृक्ष है ना। सोचे आप, श्रीमद भागवतम का पहला पिक्चर और वो आज आप उस स्थान पर है। ये देखिए, मैं बहुत सालों से सोच रहा था ये देव स्थान कौन सा है, तो ये देव स्थान है, ये देख लीजिए इसका पिक्चर, सभी लोग दिखा इधर, यही पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, है ना, ट्रांसेंडेंटल प्लेस। तो यहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी कैसे आते हैं, आप सभी जानते हैं कि पांडवों के वंशज है जिनका नाम है परीक्षित। तो पांडवों के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं, हाँ अभिमन्यु के पुत्र कौन है? परीक्षित महाराज। आप कह रहे थे अनिरुद्ध। पांडवों में अर्जुन जो है उनकी पत्नी उत्तरा जो है, अभिमन्यु जो है उनके पुत्र, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। तो अश्वत्थामा जो है, ऐसा प्रसंग है, अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र चला देते हैं ताकि पांडवों के सारे वंशज ही समाप्त हो जाए। पांडवों के पुत्र को तो मारा जा चुका है, लेकिन उनके एक वंशज बचे हैं, कौन? राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के बारे में वर्णन है, ऐसे शासन काल में पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे, खाली इंडिया के या फिर ऐसे नहीं दिल्ली शहर के, पूरे जम्बूद्वीप, इलावृत देश, भारत वर्ष, जितने भी वर्ष हैं उन सभी प्रदेशों के जम्बूद्वीप में ही वाज द किंग, है ना। और उनके शासन काल में कोई भी व्यक्ति किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। आज के समय में सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार साधु के साथ ही होता है, उनके समय में साधु के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता था। ऐसे परीक्षित महाराज जो थे, उन्होंने एक दिन अपने शासन काल में इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, जहां से आप आए हैं, वहां भ्रमण करते वक्त एक राजसी वेश में एक व्यक्ति को देखा। वो क्या कर रहा है कि एक गाय है और एक बैल है, और गाय और बैल को मार रहा है, है ना। गाय रो रही है और बैल के सारे पैर तोड़े जा चुके हैं, बस एक पैर बाकी है। वो आदमी मार रहा है, तो राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे शासन काल में ये कौन सा राजा है जिसने काले वस्त्र धारण किए हैं और क्या कर रहा है, बैल और गाय को मार रहा है। गाय रो रही है और बैल जो है उसके पैर टूटे हैं। तो गाय को बताया प्रतिरूप पृथ्वी का और बैल प्रतिरूप है धर्म का, है ना। तो बैल के, धर्म के चार पैर हैं, चार चिन्ह, सत्यता, तपस्या, स्वच्छता और दया। तो दया जो है वो टूटी हुई है, तपस्या टूटी हुई है, स्वच्छता टूटी हुई है, और बस अब सत्यता का पैर वो तोड़ने वाला है। जब इस प्रकार से राजा ने देखा, तो एक राजा जिनके शासन काल में वो इतना सा भी किसी का किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वो देखे कि पृथ्वी गाय स्वरूपा और धर्म बैल स्वरूप उनके सामने मारे जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा कि ओ काले राजा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा श्रवण करने पर वो जो राजा था वो तुरंत डर गया परीक्षित महाराज की दृढ़ निष्ठा को देख करके, और डरते डरते उसने कहा कि आप मेरा वध मत करिए, मैं तो कौन हूं, कलयुग हूं। द्वापर युग का अंत हो रहा है और कलयुग प्रारंभ हो रहा है। तो यहां से पास ही में एक स्थान है परीक्षित गढ़, परीक्षित गढ़ पर यह घटना घटी है ना। मेरठ से इधर है ये स्थान और उधर है परीक्षित गढ़। परीक्षित गढ़ में आज भी आप जाएं तो वो स्थान है जहां पर कलयुग का प्रवेश हुआ, वो वृक्ष भी आज भी बाकी है और जिस वृक्ष के नीचे ये कथा हुई। तो परीक्षित महाराज ने जब ये देखा तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख लगा कि ये कलयुग प्रारंभ होने वाला है। कहा कलयुग और वो भी मेरे जैसे शासन काल में यहां नहीं रह सकता, आपको यहां से जाना पड़ेगा, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा, आप बैल और गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं हिंदुस्तान काउ स्लॉटरिंग में नंबर वन आ गया है ना, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हुआ था और अभी कलयुग बढ़ता चला जा रहा है और आगे और होगा। तो ऐसे समय में साधुओं को गाय रक्षा करनी चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए। तो ये जो राजा को उन्होंने भगाने का प्रयास किया तो कलयुग बोला, कैसी बात करते हैं राजा, हाँ कभी कोई समय को रोक सकता है? अगर आपसे बोला जाए कि आज यहां पर 2:30 बजे कथा प्रारंभ होनी थी, 4 बज गए, रिवर्स कर दीजिए प्रभु जी, 2 कीर्तन और कर सकते हैं? एक मोमेंट चला गया, एक पल चला गया, उसे वापस नहीं ला सकते। घड़ी घड़ी कर एक एक पल टिकटॉक आवाज हो रही है और हमारी सांसें चलते जा रही है, कभी भी हमारा अंत हो सकता है। तो उन्होंने कहा, राजा आप इतने महान इतने ज्ञानी होकर के कैसी वार्ता करते हैं? आप कह रहे हैं कि रुक जाओ, मैं नहीं रुक सकता हूं, मेरा तो प्रवेश करने का समय आ गया है। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, दुश्मन भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, तुम तो कलयुग हो, समय अनुसार आए हो, तुम्हारा स्वागत करता हूं। बोलो कहां रहना चाहते हो? भाई आप, हम आपके घर आए तो आप पूछोगे प्रभु जी बताइए कहां बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, पार्क में बैठेंगे, या सोफा पे बैठेंगे, या जमीन में सोएंगे, कहां रहोगे? तो राजा परीक्षित से उसने कहा कि राजा ये तो आपका घर है, आप शासन काल के राजा, आप ही बताओ कहां रहूं। तो उसने कहा राजा ने कि ठीक है, अगर तुम विनती करते हो तो मेरे जैसे महान राजा तुमको रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। तब वहां पर उन्होंने कहा कि तुम यहां इन स्थानों में रह सकते हो। तपः शौचम दया सत्यम इति पादम कृते कृतः अधर्म अंशेत्रयम भागना स्वयं संगम मदे तवः। सत्युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या पवित्रता तथा दया सच्चाई के 4 नियम द्वारा स्थापित किया है और अब मैं तुम्हें रहने के लिए सिर्फ ऐसे स्थान दूंगा जिन स्थानों में जाकर के आपका क्या रह सके, ये 4 चीजें जो है वो आपकी कायम रह सके। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए देता हूं। सुत गोस्वामी बताते हैं, उन्होंने कहा अभ्याति थे तथा तस्मे स्थानानी कलिये ददो द्रुतम पानम स्त्रियम शूना यत्र धर्मम चतुर्विधा। 4 स्थान रहने के लिए देता हूं, द्रुतम पानम स्त्रियम सुना, द्रुतम मतलब जहां पर, द्रुतम मतलब जहां पर जुआ खेला जाता है, द्रुत क्रीड़ा, महाभारत में भी द्रुत क्रीड़ा हुई है ना, तो जहां पर जुआ खेला जाता है उस स्थान में रह सकते हो। पानम जहां पर मदिरा का पान हो, जल पान तो कर सकते हैं लेकिन मदिरा पान नहीं कर सकते, तो मदिरा पान हो वहां आप रहो। स्त्रियम, स्त्रियम मतलब जहां पर स्त्रियों का संग बताया गया वहां रहो। और सुना, सुना मतलब मांसाहार, मतलब जहां पर वध किया जाता हो, ऐसे स्थानों पर 4 चतुर्विधा 4 स्थान में तुम्हें देता हूं। अब जो ये था ये बड़ा ही अचंभित हो गया, बोला कि आपने मुझे 4 स्थान दिए हैं और आप देखिए इस्कॉन जो गौड़िया संप्रदाय है इसमें भी 4 स्थानों में जाने के लिए मना किया जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू चैंट हरे कृष्णा स्टे अवे फ्रॉम 4 थिंग्स, क्या, नो मीट ईटिंग मतलब क्या हो गया सूना, नो इलिसिट सेक्स मतलब स्त्रिया, नो गैम्बलिंग मतलब ध्रुतम, और नो इंटॉक्सिकेशन मतलब पानम। देखो लोग कहते हैं स्कॉन वालों ने अपने नियम बना लिए, श्रील प्रभुपाद जी ये देख रहे, भागवत का प्रसंग पड़ा है आपके सामने, संसार का कोई भी भागवत उठाइए और उस श्रीमद भागवत के 17वें अध्याय का ये श्लोक पढ़िए, इसमें चतुर्विधा 4 स्थान बताए गए हैं जहां पर जाने से कलयुग प्रवेश करता है। अभी लोग छुपके छुपके जाते हैं तो कलयुग प्रवेश कर जाता है, कह रहे किसको पता थोड़ी चल रहा है, हाँ जी आप छुपके नहीं जाते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर है 37 अध्याय स्कंद 1 अध्याय 17। तब कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की। राजा ने कहा, कलयुग कहता है कि महाराज ये तो आपने मुझे बंदी बना दिया, जो शराबी होंगे बस वही कलयुग में गिरेंगे, और वो भक्त होंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो तो मुक्त हो जाएंगे, मैं उन पर कैसे प्रवेश करूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, याचक की याचना पूर्ण करनी चाहिए। तो याचक की याचना पूर्ण करने के लिए राजा ने कहा, पुनश्च याचमनम जात रूपम अदात प्रभु ततो अनर्तम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान में तुम्हें प्रदान करता हूं, जहां जहां सोना हो, स्वर्ण, जहां जहां सोना हो वहां वहां असत्य होगा, वहां मद होगा, वहां काम होगा, वहां ईर्ष्या होगी, वहां वैमनस्य होगा, ऐसे स्थानों में जाकर तुम रह सकते हो। मतलब जिस व्यक्ति के पास सोना हो, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, लग्जरी वाला सोना, जिसके पास गोल्ड होगा उस व्यक्ति के पास राजा कहते हैं असत्य होगा। अपने धन को बरकरार रखने के लिए झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं आपसे पूछूं आपका लॉकर में कितना सोना है, कौन कौन बताएगा? असत्य बोलेंगे कि नहीं? बोलना पड़ेगा, क्या करें प्रभु जी, आप निकाल लोगे, क्या करेंगे है? मद अहंकार होगा जिसके पास में, उसने धनतेरस के दिन खरीद खरीद के सोना चांदी रखा होगा, वो बेचारा मद में होगा, अहंकार में होगा, ईगो में होगा। काम होगा, इच्छाएं होंगी कि बेटी की शादी में इससे गहने बनाएंगे, बहुत सारी इच्छाएं लेकर रखेगा, और उससे पहले चोरी भी तो हो सकता है, लेकिन वो कामनाओं के साथ अपना जीवन गुजारेगा। ईर्ष्या, और जिसके पास ज्यादा सोना होगा उससे क्या करेगा? ईर्ष्या, द्वेष करेगा, है ना। तो इस प्रकार से, और वैमनस्य रखेगा, वैमनस्य मतलब वैर, वैर मतलब दुश्मनी, है ना। और देखिए एक बड़ी सत्य बताया बात है, हर एक गरीब आदमी पैसे वाले के लिए चिढ़ता है, ये पैसे वाले कैसे होते हैं, लेकिन हर गरीब आदमी पैसे वाला बनना भी चाहता है ना। तो बड़ी सत्य ये स्टेटमेंट बड़ी ध्यान देने वाली है, हर एक गरीब आदमी, ये छोटा जो एग्जीक्यूटिव होता है ऑफिस में, वो हमेशा सीईओ को गालियां देता है, अरे सीईओ क्या जानता है हम कितनी मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी प्रयास सीईओ बनने का ही करता है। अरे जब तुम अज्ञानी बनने वाले हो तो उस रास्ते पे जाते क्यों? लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पे जाते हैं जहां अविद्या है, जहां अज्ञान है, जहां असत्यता है कि नहीं? इसलिए सोना चांदी के अंदर कौन रहता है? हाँ जी, कितने लोगों के पास सोना चांदी है? हाथ नीचे कर लो, आप लोगों को वो भी देख रहे हैं जो आपके घर में चोरी करना चाहते हैं। तो सोने के अंदर, स्वर्ण के अंदर कौन रहता है? कली रहता है। तो इस प्रकार से कली ने वहां पर प्रवेश किया, और राजा जब अपने घर वापस गए, ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है लेकिन शास्त्रों में, अनेक पुराणों में वर्णन है, राजा जब अपने घर गए तो बड़े ही बेचैन थे। उनको लगा क्या मेरे रहते रहते भी कलयुग प्रवेश कर सकता है? मैंने तो अपने वंशज जो थे मेरे पूर्वज, उनको वादा किया था, सेवा कैसी करूंगा कि कभी शासन काल में अनीति नहीं होगी, लेकिन कलयुग आएगा तो क्या होगा? जहां परिस्त्री संग होगा वहां क्या होगा? अनीति। जहां मेटीरियल अफेयर्स होंगे, एक्सटर्नल मेटीरियल मैटरनल अफेयर्स, क्या होगा? अनीति होगी। जहां इंटॉक्सिकेशन होगा वहां क्या होगा? अनीति होगी। तो अनीति पे चलूंगा, अपने पूर्वजों का कैसे वो करूंगा, इसी जद्दोजहद में वो अपने उस स्थान में पहुंचे जहां पूर्वजों के मुकुट आदि माला उनके सभी चीजें रखी थी, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे शासन काल में सही मार्ग पर अनुगमन करना है तो मुझे युधिष्ठिर महाराज का मुकुट पहनना चाहिए, क्योंकि उनसे सर्वश्रेष्ठ राजा कोई नहीं हुए। पुनः वापस जाकर उन्होंने अपना बक्सा होता है ना, ट्रंक आदि से खोला, उसके अंदर से एक मुकुट निकाला और अपने सिर पे धारण किया। वो कौन सा मुकुट था? सोने का मुकुट था, और सोने में कौन था? खुद ही स्थान दिया और खुद ही पहन लिया, है ना। और खुद ही पहन करके आए और अब चले हैं शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जिस स्थान पर बहुत ही कम इंसान रहते हैं, सिर्फ जानवर आदि हैं। तो कहते हैं ऐसे अद्भुत कार्य जो है भगवान की इच्छा से होते हैं। ये भगवान की इच्छा थी कि राजा परीक्षित ऐसे स्थान पर जाएं। तो कहते हैं कि कभी भी कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित वन में शिकार करते हुए खेलते खेलते एक आश्रम में गए, जिस आश्रम का नाम था श्रमिक ऋषि आश्रम। तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए, आश्रम में श्रमिक ऋषि तपस्या के स्थान पर बैठे थे, ऐसे करके तपस्या के भाव से बैठे थे, और ध्यान पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे थे। किसका? भगवान कृष्ण का, और मनी मन क्या बोल रहे थे, हरे कृष्ण 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 तो इस प्रकार से उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो रहा था। वैसे कलयुग में कुछ फायदे भी बताए गए हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि कुछ फायदे ऐसे हैं कि जब तक जीव, बड़े फायदे की बात है आपके, ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में पांच फायदे बताए गए, पांच फायदे, अभी तक एक ही पता था, पांच है आज डिस्काउंट ऑफर कार्तिक में है। पांच में से पहला है, जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है तब तक उसे उस कर्म का भागी नहीं होना पड़ता। मतलब मन से विचार किया हो कि मैं सुधीर लक्ष्मी माता जी को गोली मार दूं, ऐसे मन से विचार कर सकते हो सकता है, लेकिन उसका पाप नहीं लगेगा, उसका कब लगेगा, जब मैं कर दूंगा, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। लोग बोले मन का पाप नहीं लगता तो फायदा उठाओ, मन ही मन भोग कर लो, मन ही मन सारे वैर निकाल लो। कहते हैं जो माइंड में आता है, मन में आता है, वो एक ना एक दिन एक्शन में भी आता है ना। तो कहते हैं थिंकिंग एक प्रोसेस है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन एक्शन, थिंकिंग बोलिए साथ में, थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन। तो एक्शन से पहले कहां रोकना पड़ेगा, फीलिंग में, थिंकिंग में रोकना। तो इसलिए थिंकिंग पे रोकने के लिए माइंड को ऐसी जगह एंगेज करो जहां पर आपका मन भ्रमित ना हो, है ना, ऐसा कार्य बताया। इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। लो जी लो, पाप का तो कर्म के चिंतन से प्राप्त होता नहीं, लेकिन पुण्य का चिंतन मात्र से प्राप्त होता है। अगर आप घर में रहते हैं और आप कहते हैं श्री वृंदावन धाम की, आप कहते हैं श्री मायापुर धाम की, आप कहते हैं शुकताल तीर्थ की, तो आपको पुण्य मिल जाएगा घर बैठे, नाम उच्चारण चिंतन मात्र से। इसलिए इन लीला स्थलियों पे आने से लीला शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, और हम जब अपने घर में जप आदि करते हैं तो मेडिटेशन में हमको चिंतन होता है ऐसे स्थानों का, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात कलयुग में। तीसरा कहा, श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया, यदि भी कली के निध्य कृत विद्वान है तब भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ हैं। कौन सा लाभ है, कि भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। भगवान के कीर्तन मात्र से ही क्या होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपको कीर्तन करना है। चौथा फायदा बताया है, वेदों में भी कहा गया भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा ही कलयुग में बुराइयों से छुटकारा पा सकती है। अगर आपके बहुत सारे बुराइयां हैं मन में, किसी को डिजायर्स हैं, ऐसी आसक्तियां उसने अपने जीवन में पाली हैं, छूटती नहीं है, किसी को काम है, किसी को क्रोध है, किसी को लोभ है, अटैचमेंट्स है, एंटेंगल्ड है, बुरी तरह से पकड़ रखा है ग्रंथियों ने, ऐसी स्थिति में क्या करें, हाँ क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए, है ना। बोधयंतम परस्परम तुष्यंतिचार अमंतिचार, मेरी कथाओं का परस्पर अगर कथा करोगे तो आप इसमें रमण करोगे और आप बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा कार्य चौथा कार्य बताया, और पांचवा बताया, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जो हम कर रहे हैं इसकी कथा को ध्यान से नहीं सुनता उसको पाप लगता है, और जो ध्यान से सुनता है उसके हृदय में कृष्ण स्थापित हो जाते हैं। और आगे ऐसी भागवत कथा को अगर शुकताल तीर्थ में सुना जाए तो तत्क्षण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, अगर ध्यान से सुना जाए। इसके पीछे एस्ट्रिक मार्ग में होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, ध्यान से सुना जाए। क्या है, सभी लोग बच्चे घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, ऐसे स्थान में भ्रमित होना सरल है, लेकिन अगर हम ध्यान से सुने, जैसे एक शिकारी, जैसे एक तीर बनाने वाला था, वो तीर बना रहा था, पीछे से राजा की बारात निकल रही थी, ढोल नगाड़े पिट रहे थे, एक व्यक्ति रह गया उनके सेनापति, राजा निकल गए गली मोहल्ले से होते हुए, और उन्हें पता नहीं चला कि राजा का डोली किधर चली गई बारात, उन्होंने तीर बनाने वाले से पूछा, भैया देखा क्या? तो बोलता है क्या कहा, यहां से राजा की बारात निकली, हजारों लोग पीछे थे, ढोल लगाड़े पिट रहे थे, कीर्तन हो रहा था, राजा की जय जयकार हो रही थी, हाथी घोड़े निकल रहे थे, सहस्त्र सैनिक चल रहे थे, देखा? कहा नहीं, मैं तो तीर की नोक बना रहा था, मैंने तो कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। और वहीं से गुजरे सामने से। इसे कहते हैं एकाग्रता, डिटर्मिनेशन, कंसेंट्रेशन। अगर ऐसे डिटरमाइंड कंसेंट्रेशन से हम कथा को सुनेंगे तभी कथा का फूल पान मिलता है। तो श्रीमद् भागवत के पाठ में परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ऐसा पांचवा कलयुग का फायदा बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर्पट के अंदर। हरि बोल। तो अब हमें ध्यान से इस कथा को आगे सुनना चाहिए। तो श्रमिक ऋषि जो थे उनके आश्रम में आकर के महाराज परीक्षित ने देखा कि वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। तो परीक्षित महाराज उनसे कहते हैं कि मुझको जल चाहिए। क्या चाहिए? जल चाहिए। तो उन्होंने कहा, अब वो तो तपस्या में बैठे थे और अभी जल कैसे दे सकते थे। उन्होंने कहा इसको तो तमीज नहीं है, जब कोई आश्रम में आता है उसको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए। आप लोग करते हैं? कहां करते हैं? करते हैं सर। आपके घर कोई आए, घंटी बजाए तो पहले पूछेंगे, हाँ जी क्या काम है? ऐसा तो लिखा नहीं है। लिखा है अल्पध्यम तृणम भूमि आदि असम प्राप्तम अर्घ्यम सूनतः अविज्ञातम एवं आत्मना मन्यम चकोपहा। उसको आसन देना चाहिए बैठने के लिए। कोई भी आए घंटी बजाते दे देंगे बैठने के लिए, अरे प्रभु जी लूट के ले जाएगा हमको, है ना? तो लोग कम से कम छूट देते, जानकार आएगा तो बैठने दोगे? ठीक, आसन पर बैठने दो। बैठने का स्थान देने के बाद में जल दो। जल के बाद मधुर वाणी से बोलो, प्रभु जी अच्छा लगा आप आए। हम क्या बोलते हैं, कैसे आना हुआ? क्या काम था, मतलब कैसे आना हुआ है? और स्वागत करने के बाद में हमें उससे फिर पूछना चाहिए, प्रसाद आदि ग्रहण करेंगे और कुकिंग करना चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण आदि आए तो उनको दक्षिणा आदि दान देना चाहिए। लोग तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं आइए आइए प्रभु जी दान देंगे, हाँ हाँ दान देंगे। वो दान देने के बाद में भगवान हृदय में बैठकर देख रहे हैं, मुख से वाणी से निकला दान देंगे, और बाद में बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, और पत्नी नाराज हो गई, मैं तो अब नहीं दे सकता, पलट जाता है। जुबान जो है व्यक्ति की रहती नहीं। अभी सोचिए यहाँ परमात्मा बैठे, वो कहेगा कि असत्यता का तुमने शरण ग्रहण करी है, है? पत्नी भगवान से बढ़कर हो गई क्या? ऐसे कई लोग के घर पे जाओ, बोलते हैं प्रभु जी मंदिर बन रहा है, कुछ मंदिर के लिए दान दीजिए। कह रहे दो मिनट रुकिए, जरा वाइफ को बुला लेता हूँ। और ग्रह लक्ष्मी तो वही है ना, वही अग्रीमेंट देती है, साइन प्रभु जी का चलता है, पर हामी कौन भरती है? अच्छा एक और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, मैं अभी दो तीन दिन से सुन रहा हूँ, काफी तीन चार बार मैंने वही चीज सुना। लोग कहते हैं अगर पुरुष अच्छा काम करे तो उसका आधा भाग पत्नी को मिलता है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं कि पत्नी अर्धांगनी है, अगर पति भक्ति करता है तो उसका आधा फल पत्नी को मिलता है, कितने लोग मानते हैं? आप लोग नहीं मानते तो हाथ में क्या दर्द है? हाँ तो ठीक है, आप मानते हैं ऐसा, लेकिन आपको बता देता हूँ कई पुरुष इस बारे में नाराज भी रहते हैं, कह रहे मेहनत मैं करता हूँ वो बैठी बैठी फ्री में ले जाती है। तो ऐसी स्थिति में आकर के प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी क्या किया जाए कि पत्नी को आधा ना मिले, कोई रोकने का तरीका है? कह मैं 16 माला करता हूँ, 8 तो वो ले जाती है, मुझे 32 करनी पड़ेंगी, ऐसे प्रश्न। तो मैंने ध्यान से इस प्रसंग को पढ़ा दोबारा, पद्म पुराण में वर्णन है ही पत्नी अर्धांगनी और उसको आधा फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु कब? जब पत्नी पति के कहे अनुसार चलती है। ये ध्यान देने वाली बात है माताओं के लिए, जब पत्नी पति के कहे अनुसार चलती है तब पति के किए गए पुण्य का आधा भागीदार होती है। अगर पति के कहे अनुसार ना चले, वाद विवाद हो, हर चीज पर लड़ाई झगड़े हो, तो उसको आधा भाग नहीं मिलता है, ऐसा वर्णन है। इसको एस्ट्रिक मार्क करके ध्यान से पढ़िएगा दोबारा से, है ना? तो इस प्रकार से हमें व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, और एक बार मुख से निकला उससे, है ना, वचन से नहीं टलना चाहिए, प्राण जाए पर। अभी तो लोग कहते हैं प्राण भी चले गए और अभी अमिताभ बच्चन भी चले जाएंगे, है ना, प्राण भी गए बच्चन भी गए, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचंद्र जी हमें मर्यादा पुरुषोत्तम सिखाते हैं और हर परेशानी में हमें भगवान का स्मरण रखना चाहिए। तो शमिक ऋषि के आश्रम में उन्होंने कहा कि हे राजा, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, हे ऋषि, कई बार मेरे मांगने पर तुमने मुझे पानी नहीं दिया। क्रोध में आकर कलयुग के प्रभाव में एक मरा हुआ सर्प उठा करके शमिक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से क्रोध अवस्था में चले गए। शमिक ऋषि का पुत्र आया, उसका नाम था श्रृंगी, और श्रृंगी ने जब आकर देखा कि उनके पिता के गले में एक उर्गम पड़ा हुआ है, उर्गम मतलब मरा हुआ सांप, उर्गम साउथ इंडियन भाषा नहीं है, संस्कृत है, उर्गम, सर्पह भी बोलते हैं, उर्गम भी कहते हैं, उर्गम पड़ा है। उसने कहा, किसने मेरे पिता को अपवित्र स्थिति में डाला है, उसको छोड़ूंगा नहीं। वो कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मण को शांत स्वभाव का होना चाहिए। अभी आप कहेंगे, हम तो जी अपने नाम के पीछे चौहान लिखते हैं इसलिए हम शांत नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है वो ब्राह्मण होता है, और जो सरनेम में कुछ भी लगाता हो लेकिन भजन नहीं करता वो शूद्र होता है। कलो संभवतः शूद्र, कलयुग में सभी सब संभवतः शूद्र ही है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन। तो अगर आप पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश, कर्म और गुणों के आधार पर मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण ब्राह्मण नाम लिखता है लेकिन ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता तो ब्राह्मण, तो इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्राह्मण के कार्य करे। और अगर कोई शूद्र भी जाति में जन्म लिया हो, भगवान के नाम का कीर्तन करता हो तो क्या बन सकता है? उसका कर्तव्य क्या है? शांत रहना चाहिए। श्रृंगी ऋषि 13 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण बालक होकर के ऋषि पुत्र होकर कैसे क्रोध कर गया? इतना क्रोध किया कि उसने अपने जल में भरा हुआ पात्र लिया और हाथ में जल लेकर के उसने बस एक चीज कह दी, और उन्होंने कहा कि अब से 7 दिन के अंदर क्या होगा, कौशिक नदी का जल भरकर उसने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर इस नीच राजा को तक्षक नाग डस लेगा। इति लंगिता मर्यादाम तक्षक सप्तमे अहिना दक्ष्यन्ति स्मा कुलंगाम चोदिता मे तद्रुहम। उन्होंने कहा, इस प्रकार से पिता के प्रति शत्रुता रखते हुए उस श्रृंगी ऋषि ने सप्तम अहिना 7 दिन के अंदर मरने का श्राप दे दिया। अभी राजा परीक्षित कैसे थे? राजा थे, शक्तिशाली थे, जम्बूद्वीप के राजा थे, ऊपर से भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त थे। गर्भ में ही उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनका एक नाम विष्णु रात भी था। ऐसे परीक्षित महाराज को कोई भी आकर के ऐरा गहरा आकर के श्राप देगा लग जाएगा? हाँ, कोई भी ऐरा गहरा श्राप देगा लग जाएगा? आज बचाइए आप अपने प्रधानमंत्री को श्राप दे दे, लग जाएगा उनको? आपको मान लीजिए पता चले आपकी गली का कुत्तों ने प्लान किया आपको काटेंगे, अरे बड़े तेज गाड़ी चलाता है, हॉर्न बजाता रहता है, हमारे ऊपर से चढ़ जाता है, हमें सोने नहीं देता, आज मिलकर इसको काटेंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको काटने के बाद उसको भगाने का इंतजाम करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने तक्षक से डरे नहीं, राजा परीक्षित वहां से चल करके उन्होंने सोचा, ये चीज तो क्या है, भगवान का दिया हुआ फल है। मैं भोगी हमेशा से ही इंद्र तृप्ति में लगा रहा, मैंने कभी भगवान के भजन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भक्त है। लेकिन भक्त जो होता है वो कहता है मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, और जो अभक्त होता है नया नया नौसिखिया, उसको पूछो भगवान के बारे में जानते हो, हां जी ज्ञान तो हम ही से शुरू होता है। तो जो बड़ी बड़ी बातें करे भगवान के लिए जिसमें विनम्रता ना हो वो व्यक्ति सही मायने में अज्ञानी है, और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो लेकिन कभी घमंड ना करता हो, हर प्रश्न के बाद उत्तर देने के बाद कहता हो मैं तो अज्ञानी हूं, वो सही मायने में पूर्ण ज्ञानी है। इफ यू से दैट आई नो यू डोंट नो, एंड इफ यू से आई डोंट नो यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं, कोई प्रश्न पूछूं तुरंत सब लोग हाथ खड़ा कर आई नो और ऐसा आप लोगों के साथ नहीं, आप तो सही में शास्त्रिक उत्तर ही दोगे। अगर मैं ये पढ़ यहाँ प्रांगण में घूमने वाले किसी से भी पूछूं, जानते हैं कौन सा स्थान है, कौन बता सकते हैं? अभी आ जाएंगे 10 लोग, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो बोले यहाँ पर गीता हुई थी, अर्जुन ने सुनाई थी कृष्ण भगवान को, ऐसे बोल के जाते हैं। बहुत सारे वीडियो बने हुए ऐसे मैंने देखा, अर्जुन को, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सुनाई गीता यहाँ पर, अर्जुन ने सुनाई कृष्ण भगवान को गीता यहाँ पर। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ज्ञानी है बड़े। और आप उन्हें समझाओ तो कहते हैं अरे रहने दीजिए, सबकी अपनी अपनी है, हमारे हमें मालूम है, हमारे दादा ने सिखाया था, दादा थे उसके बाद पोते हुए बड़े आज माशाल्लाह। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि राजा ने शमिक ऋषि के बेटे के द्वारा दिए गए श्राप को भगवान के द्वारा दिया गया फल समझा। परेशानी आए तो क्या समझना चाहिए, भगवान का फल या फिर दुख? परीक्षित महाराज को कुत्तों ने काटने का प्लान नहीं किया था, तक्षक ने काटने का प्लान किया। तक्षक जानते कौन है? जैसे आप फिल्में देखते हैं ना, सांप नहीं है, तक्षक एक ऐसा सांप है उड़ने वाला, उड़ता है और अपनी इच्छा मात्र से पूरे के पूरे वनों को भस्म कर सकता है अपने फुसकार से। मतलब जैसा आप एनाकोंडा टाइप का देखते हैं ना, वो तो उसका एक छोटा सा प्रतिरूप टीवी में दिखाते हैं, सोचिए आप। ऐसा तक्षक का वर्णन इसके अंदर, ऐसा तक्षक आएगा तो सब चला कर रख देगा, उसके जहर की फुसकार से वन आदि सब, पेड़ आदि सब जल सकते हैं। ऐसे तक्षक के काटने पर राजा को चारों तरफ से बंद कर लेना चाहिए था, अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाना चाहिए था, कहना चाहिए था बेटा लेगेसी पेपर बना लो, जल्दी जल्दी साइन करना है ना, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, पावर ऑफ अटर्नी देनी है, तुम्हारा राज्याभिषेक करना है, 7 ही दिन बचे हैं। ऐसा नहीं किया, वो जानते थे मैं तो बहुत दिन से इस का इंतजार कर रहा हूं, कब वो दिन आएगा जब मैं फ्री होकर के भगवान की कथाओं का श्रवण करूंगा। चलते चलते राजा परीक्षित दिल्ली से कहां पहुंचे हैं, जानते कौन सा स्थान? तब तो उसका नाम शुकताल नहीं था, तब इसका नाम था गंगा तीरे, गंगा के किनारे, है ना, गंगा के किनारे उस स्थान पर चलते चलते आए। और यहाँ पर गंगा जो है बहुत तेज भी नहीं है और बहुत धीरे भी नहीं, ऐसी गंगा है। वो गंगा नदी के किनारे आए तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से एक भक्त को सारी परेशानियों में भगवान का हाथ देखना चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो हमेशा ये सोचना चाहिए ये भगवान के द्वारा दिया गया क्या है, प्रसाद है। ऋषि शमिक ये भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में श्राप देते तो बालक बचता क्या? उसने श्राप दिया, महाराज परीक्षित भी भक्त थे, सीनियर डिवोटी थे, वो भी अगर पलट के वैसा जवाब देते तो श्रमिक ऋषि, वो तो तक्षक 7 दिन में काटता, वो तो क्षण भर में भस्म हो जाता। लेकिन उन्होंने नो ऑफेंस का प्लान ले रखा था, जैसे हम लेते ना एयरटेल का प्लान 24 GB 30 GB, उन्होंने नो ऑफेंस अपमान ना करने का प्लान ले रखा था, कहा मैं अपमान नहीं करूंगा, और उसको स्वीकार कर चले गए और अपने पुत्र आदि को स्थान देकर के यहां चले आए। बोले अभी 7 ही दिन बाकी है, देखा जाए तो हमारे जीवन में भी 7 ही दिन बाकी हैं, है ना। जब भी हमारी मृत्यु आएगी वो दिन या तो सोमवार होगा या तो मंगलवार होगा, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं 8वें दिन मरूंगा, है ना, 7 ही दिन में हम भी मरते हैं, पर तैयारी किसकी है? अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, है ना, ईश्वर ना चाहे, गॉड नोज कि अगर किसी को डिटेक्ट हो जाता है कि मेरे को कैंसर हो गया है, कितने लोगों का भजन में मन लगेगा? कैंसर के बाद तो ये होता है ना, 6 महीने में मर सकता है, कीमोथेरेपी के बाद रिवाइव भी हो सकता है, परंतु महाराज परीक्षित को तो अटल था कि 7 दिन में मरना है, तब भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए, गंगा के तीरे पे आए। यहाँ पर बुखार आ जाता है, टाइफॉइड का सिम्टम नजर आता है तो व्यक्ति कहता है जा नहीं पाएंगे, है ना, वो पैदल आ रहे थे, रथ पर आरूढ़ होकर नहीं आए, क्योंकि बोले अभी मैं राजा थोड़ी रहा, अपना मुकुट आदि छोड़कर अपना राजसी वेश त्याग कर एक साधु का वेश बनाकर आए हैं। ये देखिए राजा परीक्षित का वेश कैसा है, राजा मुकुट पहन रखा है, कैसे है? साधु के रूप में आए, तो इस स्थान पर राजा बनकर नहीं आना चाहिए, साधु बनकर आना चाहिए। साधु बनकर आए और यहां पर आकर के बैठ गए और अब उन्होंने अपना सोचा कि अब मैं क्या करूं, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य अशिष्ट व्यवहार किया, फलस्वरूप वे अत्यंत उद्गिन थे। अभी देखिए इन्होंने उल्टा शराब भी नहीं दिया, बस इसलिए चिंतित थे मैंने एक ऑफेंस कर दिया, सांप उठाकर के शमिक ऋषि के डाल दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो ये हमारे जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए। कुछ हो ना हो भक्त के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, भक्ति कितनी बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भक्त के प्रति अपराध ना। अगर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वैष्णव आदि के चरणों में अपराध करके हम सोचे हम अकेले भजन कर रहे हैं, वो भजन फलदायक नहीं है, वो मृत्यु और जहर के रूप में प्रदान होता है। यहां पर लिखा है वह उन्हें तुरंत हो ले किंतु उन्हें परिवार वालों को कुछ ना हो, मनुष्य को दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके पूरे परिवार को सहन करना, आदमी ये कहता है ना मैंने अपराध किया, उसका फल पूरे परिवार को सहन करना है। सोचिए एक पाप एक अपराध पूरे परिवार को लगता है, ये परपट में लिखा है प्रभुपाद जी ने। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त के द्वारा भगवान की सेवा करने के कारण फल पूरे परिवार को मिलता है। जैसे भक्त का फल पूरे परिवार को है ऐसे ही अपराध का पाप भी पूरे परिवार को, अपराध का कर्म की प्रतिक्रिया भी पूरे परिवार को। तो इसलिए बड़ा ध्यान देना चाहिए कि परिवार का कोई भी सदस्य अपमान ना करे, और कर भी दे तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि उनको कैसे भी भक्त बनाने का, हम ऐसा क्या करें कि उनको हम भक्त बनाएं। इस प्रकार से राजा पश्चाताप कर रहे थे और अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त होकर उन्होंने प्लान किया इस प्रकार से कि मैं जाऊंगा ऐसे स्थान पे जहां पर ध्यान पूर्वक भजन कर सके। हम लोग यहां क्यों आए, क्योंकि सुना है तीर्थ जाओ तो पुण्य मिलते हैं ना, इसलिए आए। भक्त का पुण्य तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही शुरू होता है और हरे कृष्ण महामंत्र पर ही समाप्त हो जाता है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य नहीं है। गंगा जी एक भक्त को क्या पवित्र करेंगे, गंगा जी कहती है भगवान से कि जब मुझ पर सारे पाप आ जाएंगे दुनियादारी के तो मैं कैसे शुद्ध होंगी, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, दिल्ली से बस भर के भक्त आएंगे और सारे के सारे बोलेंगे क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से जब कीर्तन करेंगे और आप में स्नान करेंगे उनके कीर्तन मात्र से और उनके स्पर्श मात्र से गंगा नदी शुद्ध हो जाएगी। सोचिए कीर्तन की बड़ी महिमा है कलयुग में, कीर्तन ना करके कथा ना सुन के खाली अगरबत्ती जलाने से पुण्य प्राप्त कर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग ही तो जाएंगे। हमारे जीवन में हमारे गुरुजनों आचार्यों द्वारा भगवान के द्वारा दिए गए प्रमाणिक मार्ग को हमें दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे आए और उन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ उपवास करूंगा। कब तक उपवास करूंगा, 7 दिन 7 रात बिना खाए मरणासन अवस्था में मैं बिना अन्न ग्रहण किए 7 दिनों तक उपवास करूंगा। और अत्यंत शुद्ध जल धारण करके जिसमें भगवान के चरण कमल की धूली है, ये जल तीनों लोगों को पवित्र करता है। ऐसा जल जो शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे ऐसी नदी की शरण ग्रहण करना ही चाहिए। गंगा नदी के किनारे वो आए, जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गंगा से कहीं अधिक यमुना श्रेष्ठ है, 1000 बार गंगा में स्नान करना 1 बार यमुना में स्नान करने के बराबर है, परंतु फिर भी गंगा और यमुना का ऐसा भेद करना हमको अपराध कर सकता है। तो हम गुणगान तो गा सकते हैं यमुना का, पर गंगा के प्रति हमारे मन में द्वेष दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि गंगा 1000 गुना नीची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा महान है, गंगा से 1000 गुना यमुना महान है, दोनों महान है और दोनों ही बहने हैं गंगा और यमुना, उसकी कथा हम कल करेंगे गंगा के बारे में। वराह पुराण आदि में भी ऐसा वर्णन है। और उन्होंने फिर इस प्रकार से इस स्थान पर आए जहां पर अनेक ऋषियों ने सोचा कि महाराज परीक्षित को हमने सुना है, राजा को आज भाई अगर प्रधानमंत्री को कोई श्राप दे दे, मान लीजिए आपका मुख्यमंत्री श्राप दे दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो सारे लोग उसी न्यूज को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट लोग मुख्य व्यक्ति मुख्य अतिथि उसी खबर को सुनने में लग जाएंगे। दुनिया जहान से सभी ऋषि मुनि चलकर के राजा परीक्षित के सक्षक नाग द्वारा डसे जाने की लीला को देखने के लिए और राजा किस प्रकार से मरणासन उपवास कर रहे हैं देखने के लिए शुकताल तीर्थ में सभी ऋषि आए। अभी ये स्थान कैसा बन गया, पावना नाम च पावनम, पवित्र व्यक्ति को भी पवित्र करने वाला ये तीर्थ बन गया। यहाँ पर कौन कौन से ऋषि आए हैं उनका हम नाम सुनेंगे और आप सब उच्चारण करेंगे, सभी ऋषियों को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर आए हैं चैवन ऋषि, बोलिए, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अंगिरा ऋषि, परशुराम, उतथ्य, मेधातीत, देवल ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, मैत्रेय ऋषि और आदि अनेक ऋषि आए हैं। ऐसे इतने महान ऋषि आपने देखा, इसमें गौतम आया, भारद्वाज आया, ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति का धर्म कुल परंपरा पूछी जाए और पूछे आपका गोत्र क्या है, चाहे वो पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब सभी ऋषियों की संतानें हैं। जिनके कर्म जैसे थे उनको वैसा धर्म दिया गया। कोई बच्चा तेज लड़ने में हो तो कहते हैं तू क्षत्रिय बन जा, कोई बिजनेस में तेज हो उसे कहा तू वैश्य बन जा, जो शास्त्रों में तेज था उससे कहा तू ब्राह्मण बन जा, जिसमें लोगों की सेवा करने का भाव था उससे कहा तू शूद्र बन जा। ऐसे करके सभी ऋषियों की संतान है। इसीलिए आप देखेंगे क्षत्रियों में भी भारद्वाज गोत्र है, ब्राह्मण में भी भारद्वाज गोत्र है। इसका मतलब ये गोत्र कैसे प्रकट हो, गोत्र का मतलब है वो सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया कि तुम सृष्टि की रचना करो, और हम सभी उन्हीं सप्त ऋषियों की संतान है। उसमें गौतम गोत्र होता है, गौतम ऋषि, मैत्रेय ऋषि और शांडिल्य ऋषि, और देखिए भारद्वाज ऋषि। सभी ऋषि आप सामने देखेंगे, सभी ऋषि बैठे हैं और वो भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं, परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी ऋषि यहां पर प्रकट हुए और सभी देखने के लिए बैठ गए, जैसे आप सभी बैठे हैं देखने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त किया है। आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंक जाने योग्य कूड़ा समझते हैं, है ना। आप सोचते हैं राजा जो है वो तो ऐसा होता है, वैश्य होता है, विषय राजा के पास नहीं जाना चाहिए। संत जन जो होते हैं वो विषय राजा के पास नहीं, वो कूड़े के समान समझते हैं। लेकिन परीक्षित को उन्होंने क्यों मिलने के लिए आए, क्योंकि वो जानते थे परीक्षित कोई साधारण राजा, वो एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, और उन्होंने भगवान का अपनी माता के गर्भ में ही साक्षात्कार किया, इसीलिए उनका एक नाम है विष्णुरात। उन्होंने विष्णु की शरण ग्रहण करी है बचपन से, और बहुत सारी इच्छाएं नहीं थी राजा की, बस एक ही इच्छा थी। यहां वर्णन है, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव हो। तो तीन अभिलाषाएं लेकर के परीक्षित महाराज इस जगह पर आके बैठे। कौन कौन सी तीन अभिलाषाएं हैं? पहली कि मैं जन्म लूं तो कहां लूं, जहां भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम मिले। दूसरा, भक्तों की संगति, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग मिले। और तीसरा, समस्त जीवों के साथ मेरी मैत्री हो। एक भक्त अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। अगर आपके मन में किसी के प्रति शत्रु भाव है तो आप देख लीजिए, अभी आप भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये आखिरी इच्छा लेकर महाराज परीक्षित गंगा नदी यहां पर आए। पूर्ण आत्म संयम में महाराज परीक्षित ने पूर्व विमुख होकर, पूर्व विमुख मतलब पूर्व की तरफ देख करके, कुशा के बने हुए आसन पर बैठकर गंगा के दक्षिणी तट पर आसन पर बैठ गए और अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। सारा भार अपने पुत्र जन्मेजय, उनके चार पुत्र थे, तीन छोटे थे, उसमें प्रमुख जन्मेजय थे, उनको देकर के पूर्ण आत्म संयम में। भक्त के लिए बहुत जरूरी आत्म संयम होना है ना। हम तो प्रसाद देख करके आत्म संयम रख नहीं पाते, हमारा प्रसाद देख कर आत्म संयम टूट जाता है ना। गोलगप्पे के यहाँ पर ठेला लगा दे छोटा सा, बोले प्रसाद है, मंदिर से आया है, तीन चार पीछे से कथा सुनते सुनते प्रभु जी अभी आया करके निकल जाए, आजा आजा किससे पता चलता है ना। आत्म संयम, कथा सुनने में दृढ़ता, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। आप सुनिए महाराज परीक्षित ने कितनी एकाग्रचित होकर कथा सुनी। महाराज परीक्षित ने आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए और उनको देखने के लिए स्वर्ग लोक के देवता भी उतर आए। कहा कि अरे भैया ये व्यक्ति तो धाम जा रहा है, हम तो स्वर्ग के ही है खाली। स्वर्ग के ऊपर 6 लोक हैं और उसके ऊपर वैकुंठ धाम है जहां जाने के बाद वापिस नहीं आता। अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग लोक से आधे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो आप सीधे कहां जाएंगे? भगवत धाम। भगवत धाम मतलब कहते हैं जहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं, जहां पर चंद्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर सिर्फ क्या रहता है? भगवान का प्रकाश रहता है ना? और ऐसे ना तद्भसायतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धामं परमं ममः। भगवान गीता में कहते हैं ऐसा धाम है जहां जाने के बाद वापस, तो आप जाकर वापस आना चाहते हैं हरे कृष्ण जी, तो क्या करना चाहिए?
हरे कृष्णा,
आपको अपना नाम ही बोलना चाहिए,
कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे हरे राम हरे।
और इसी प्रकार से सभी देवी देवता इस स्थान को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहते हैं अनेकों वैकुंठ हैं और वैकुंठों का वर्णन है, परंतु महाराज परीक्षित गोलोक जा रहे हैं, तो कैसे? वैकुंठ के ऊपर भी सबसे उत्तम लोक है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, उसका नाम है गोलोक, गायों का लोक। यहाँ पर उत्तम श्लोक में वर्णन है पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, संकर्षण लोक, प्रद्युम्न लोक, ऐसे अनेकों वैकुंठ हैं, परंतु महाराज परीक्षित ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक को नहीं जा करके, वैकुंठ लोक को ना जा करके गोलोक जाने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर बताते हैं कि उन्होंने दो प्रश्न पूछे महाराज परीक्षित ने, सिर्फ दो ही प्रश्न पूछे हैं। किससे पूछे हैं? जितने भी ऋषि मुनि आए थे उनसे प्रश्न पूछे हैं। और क्या कहा? ततः चवे प्रच्छामं इमं विपिक्षः विभ्रशं विप्रा इति कृत्यायमानं सर्वात्मनं म्रियमाणे च कृतं शुद्ध च शुद्धं च तत्र अमृशतं अभियुक्तः। उन्होंने कहा मेरा पहला प्रश्न है सभी परिस्थितियों में हर एक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और दूसरा पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आ गई हो, मरणासन हो, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो दो कर्तव्य पूछे, पहला हर परिस्थिति में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और दूसरा मृत्यु जब निकट हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
हाँ जी,
कर पाएंगे ऐसा हर परिस्थिति में? तो फिर मत करिए, हमें वो करना है जो हर परिस्थिति में कर सकते हैं। हम लोग क्या है, ऑडियो विजुअल सिस्टम पे चलते हैं, हम ऑडियो और विजुअल भी चाहते हैं, तो ऑडियो विजुअल के लिए श्रीमद् भागवत की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, है ना, कथा श्रवण करें, और जब ये पिक्चर मस्तक पे चलेगी तो हम मरणासन अवस्था में भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो कथाएं बड़ा ही गहरा इम्पैक्ट डालती हैं एक व्यक्ति के जीवन में अगर हम दृढ़ता से सुने। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, सभी भक्त बोले कि हमने सुना है कथा को ध्यान से सुनो, तो वैकुंठ से विमान नीचे आता और वैकुंठ के दूत आकर के कार्तिक के महीने में भागवत कथा शुक्ताल तीर्थ में अगर सुनो ध्यान से तो वैकुंठ से विमान आता है और उसमें दो विष्णु लोक के विष्णु दूत होते हैं और आपको बिठाएंगे और ले जाएंगे। तो पहले तो हम ध्यान से कथा नहीं सुनते, मान लो ध्यान से सुन भी ली तो मन में ये डर रहता है कि विमान आ गया तो अभी जाना पड़ेगा, अगर आ जाए तो कितने लोग तैयार है जाने के लिए? हाँ तैयार है, झूठ मत बोलिए, कितने लोग तैयार है, सच सच बताइए। अरे झूठ बोल रहे हो, हाँ विमान आएगा बैठ जाओगे? अरे पहले बोलोगे जरा दिल्ली होकर आता हूँ, फिर 2 घंटा वेट, हाँ कोई नहीं जाएगा। वैकुंठ विमान आए तो जाने के लिए कोई अभी परिस्थिति या कितनी भी विषम हो पर हम जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ही नहीं जाना चाहते तो क्या भगवान खाली बैठे ले जाने के लिए आएंगे? उसी को ले जाते हैं जो जाना चाहता है। फिर दूसरा, कथा प्रसाद समाप्त होने पर एक भक्त के लिए विमान आया, अनेकों भक्त के लिए, ऐसा भी देखते रह गए, बोले हमने भी ध्यान से कथा सुनी, बस 3-4 बार बस गए थे फोन कॉल अटेंड करने, 2-4 बार इधर उधर देखा था, सोच रहे थे और कथा कितनी देर चलेगी, एक आध सोच रहे थे, घुमाने लाए थे, पकाने लाए थे, ऐसे करके हम तो ध्यान से तो सुने, बैठे तो रहे, कमर में कितना भी दर्द रहा बैठे, नोट्स वोट्स भी बनाए हमने, मन नहीं लग रहा था पर काम तो कर रहे थे। तो क्या हमें हमारे लिए विमान नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए। तो उनको जो वक्ता थे भागवत कथा के, वो कहते हैं देखिए विमान का अर्थ है विकत मानः, जिसने अपने मान को जीवन से निकाल दिया हो उसके लिए विमान तत्क्षण उसी पल आ जाता है। विमान मतलब जिसने विगत मान, अमानिना मान देना कीर्तनम सदा हरि, वही हरि का जो सदा कीर्तन करता है वो विमान पर आरूण हो जाता है। अमानिना मान देना, धक्का मारो मुक्का मारो गाली दो पर मैं क्या करूंगा आपसे प्रेम करूंगा। अमानी ना मान देना कीर्तन हम सदारी, हरि का कीर्तन करने वाला ऐसा होता है। वरना क्या होगा, आपने मुझे कुछ बोला कंठी माला तो मोटी होगी पर मुंह से भाषा गलत निकलेगी। हाँ जी हमारी सीट नंबर 2 पे कैसे बैठ गए आप, आए थे तब इसी पे आए थे, जाएंगे तो इसी पे जाएंगे, है ना। ये सब भाव भक्त के भाव नहीं है। बोले जी आए थे तो इस पे आए थे, जाएंगे जमीन में बैठ के चले जाएंगे, टायर पे बैठ के चले जाएंगे, छत पे बैठ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे इसी जगह पे रह जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा है, भाव है क्या? एका दो का लोग ही देखे हाथ खड़े किए बोले जाने को तैयार है, बाकी लोग तो तैयार ही नहीं जाने के लिए, तो मान कैसे चला जाए। इसीलिए आपने देखा शुक तीर्थ ताल तीर्थ में इतनी बड़ी हनुमान की मूर्ति क्यों, यहाँ पर राम जी तो आए नहीं, हनुमान क्यों? इसलिए क्योंकि ये स्थान केंद्र है कथाओं का, पूरे ब्रह्मांड की कथाओं का केंद्र है जहां पर श्रीमद् भागवत। क्यों? सभी पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत पुराण। कोई कहे शिव पुराण में शिव की महिमा है, गरुण पुराण में मृत्यु की महिमा है, यमराज की महिमा है, लेकिन भागवत पुराण में सारे पुराण समान स्तर पर है ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। पद्म पुराण के अंदर भी भगवान कृष्ण की महिमा है, विष्णु पुराण में भी भगवान की महिमा है, परंतु उसमें कर्म कांड के साथ मिश्रित भक्ति है। शुद्ध भक्ति कोई पाना चाहता है उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। तो जब भगवान साकेत धाम जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, सभी वानर आदियों को ले जाकर भगवान ले जाना चाहते थे अपने साथ। तो जब अंतिम समय आया रावण का वध करने के बाद, हम चर्चा कर रहे थे, राक्षस वानर करोड़ों करोड़ शंखुर, वहां पर वानर रावण और राम के युद्ध में मारे गए थे। अभी रामचंद्र जी ने कहा मेरे लिए इन्होंने प्राण त्यागे हैं, मैं भगवान होकर इनको प्राण नहीं दे सकता। इंद्र को कहा अपनी अमृत वर्षा कर दो, चाहते तो खुद भी कर सकते थे परंतु उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया। इंद्र की ड्यूटी है अमृत देना, तो इंद्र तुम दो, चलो मैं नहीं दूंगा। इंद्र ने वर्षा कर दी और तभी देखते देखते सभी वानर जीवित हो गए। विभीषण ने कहा प्रभु सारे वानर जीवित हुए लेकिन राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए, राक्षस ने भी तो अमृत गिरा। बोले राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए क्योंकि राक्षस तो पहले ही भगवत धाम चले गए। कहा अच्छा, वानर राम की सेना में हो गए भगवत धाम नहीं गए, राक्षस भगवत धाम चले गए, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि राक्षस जो थे अपने मरते समय अंतिम समय में राम का चिंतन कर रहे थे और वानर अपने अंतिम समय में रावण का चिंतन कर रहे थे। ये सारे चिंता करते थे राक्षस असुर। पता है राम ने ना सेतुबंध रामेश्वरम पे ना पुल बना दिया। पता है राम के भाई लक्ष्मण को ऐसा हुआ, राम की कथाएं लीलाएं चल रही थी और जितने वानर थे उनके मन में राक्षस रावण की आजा, आज कुंभकर्ण को भेज दिया, आज मेघनाथ को भेज दिया, वो रावण का चिंतन कर रहे थे इसीलिए वो सारे के सारे पृथ्वी पे रह गए। उनका शरीर तो छूटा था पर आत्माएं भटक रही थी, परंतु भगवान राम ने अमृत वर्षा करा के उन वानरों को लेकर आए और अपने राजकाल को 13,000 सालों तक संपूर्ण करने के बाद उन्होंने सोचा साकेत धाम चलता हूं अपनी लीलाएं समाप्त करके। हम तो सिर्फ 14 वर्ष का ही जानते हैं ना, भगवान वन को गए, कहते हैं भगवान वन को गए इसलिए भगवान बन गए, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं भगवान वन को गए तो भगवान, अगर भगवान 14 साल को वनवास नहीं जाते तो आप क्या कथा करते रामायण की, क्या कथा करते रामायण की? 14 साल, 13,000 साल में से 13,000 ईयर्स में से 14 साल माइनस कर दो, कुछ भी नहीं है। ऐसा हो गया जैसे गार्डन में हमारे 2 दिन के लिए शुक्ताल तीर्थ घूम के चले। अगर नहीं जाते भगवान 14 साल के लिए तो किस कथा का वर्णन करते, को कथा ही नहीं जानते लोग। शुरू कहां से होती है, वो दशरथ जी के 4 पुत्र थे, उनमें से एक आ गए वनवास में, वहां पर उन्होंने असुरों का वध किया, अंतकाल में रावण सीता का लेकर के चला गया, भगवान रावण को मार कर लेकर के आए, बाद में लवकुश आए और इसे समाप्त। हम 14 वर्ष की लीला जानते हैं, अगर राम वन नहीं जाते तो क्या होता। तो ये सब लीला समाप्त करने के बाद रामचंद्र जी ने लीला इसीलिए करी, वो जानते थे कलयुग में भक्त बड़े ही कम बुद्धि के होंगे, 14 साल याद रख ले वही बहुत है, 13,000 साल की लीला करूंगा याद नहीं रख पाएंगे। 13,000 साल के बाद जब साकेत धाम जा रहे हैं सभी को लेके, तो हनुमान जी को बोले, हनुमान तो आप तो सबसे श्रेष्ठ हैं, आप चलिए। हनुमान बोले, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। कारे शुकताल तीर्थ में प्रशांत मुकुंद प्रभु ने पूछा, कितने लोग धाम जाएंगे? सभी हाथ खड़ा किए। और तुम हनुमान, तुम नहीं जाओगे? तुम्हें ऐसा क्या परेशानी धाम जाने? कहा, प्रभु आपके धाम में सब कुछ है, बहुत आनंद है, आपका संग भी, एक चीज नहीं है, आपकी कथाएं नहीं है प्रभु। आपकी कथा में जो आनंद है ना प्रभु, वो आपके अंदर भी आनंद नहीं आता। राम से बड़ा राम का नाम, इसीलिए बोला गया। आपसे बढ़कर आपके नाम में जो आनंद है ना प्रभु, आपके कथा में जो आनंद है ना, वो आपके साथ नहीं मिलता है, इसलिए हम कथा सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, चिरंजीवी रहो। इस कल्प में जब तक मेरी कथाएं इस संसार में रहेंगी, तब तक आप वहां विराजमान रहेंगे। और इसीलिए उनका नाम है हनुमान। हनुमान मतलब जिन्होंने अपने मान का हनन किया है, फिनिश्ड। कोई भी फोटोग्राफ नहीं देखेंगे रामचंद्र जी के साथ खड़े होकर ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाया हो। हर एक में कहां बैठे होते हैं, देखिए, मान नहीं है जिसके जीवन में, वो हनुमान है जिसने अपने मान का हनन किया है। इसलिए शुकताल तीर्थ में 150 फीट का उनको आपको विग्रह देखने को मिलता है। कोई साधारण नहीं है हनुमान। मान समाप्त करना जीवन से बड़ा मुश्किल है। हम सब सम्मान की अभिलाषा चाहते हैं ना, अभिलाषी है, हमें भी इज्जत मिले, हमें भी सीट मिले, वोटिंग मिले, जय जयकार मिले, और अपमान मिलता है तो इतना दुख होता है, रात को नींद नहीं आती है ना। तो हमें भक्त को इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब सभी ऋषि मुनि बैठे थे और परीक्षित ने ऐसा प्रश्न कर लिया, तभी वहां पर व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोलो, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री व्यास देव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग सुकोमल और सुगठित थे, बहुत ही सॉफ्ट दिखने में थे। आंखें सुंदर थी, बड़ी बड़ी थी, नाक कान उठे हुए थे, उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था। देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हों। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी थी, नाभि गहरी थी, सुंदर धारियों से युक्त थे, उनकी भुजाएं लंबी थी। एक भक्त में विशेष गुण होता है, उसके हाथ जो होते हैं वो घुटने से नीचे आते हैं। भगवान और भगवान के भक्त अजान बाहु भगवान को बोलते हैं, जिनके घुटने से हाथ ऐसे नीचे, जब खड़े होते स्ट्रेट तो घुटने से नीचे हाथ आए, ये होते अजान लंबित बाहु, भगवान की बाहु। वैसे ये भी हैं, लंबी भुजाएं थी, घुंघराले बाल थे और सुंदर मुखमंडल था, और साथ में निर्वस्त्र भी थे। अभी आप सोचेंगे, निर्वस्त्र व्यक्ति कैसे सुंदर लग सकता है ना? आप देखिए, इस संसार का भोग वृत्ति निर्वस्त्रता में है, भोग में निर्वस्त्र है व्यक्ति, परंतु सच्चाई ये है, निर्वस्त्रता सुंदरता नहीं है। हम जब तैयार होते हैं, अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तभी सुंदर दिखते हैं। कभी आप देखिए, आप निर्वस्त्र हो तो क्या सुंदर दिखते हैं? भोगी व्यक्ति को तो सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन एक संस्कारी व्यक्ति को सुंदर नहीं दिख सकते। तो ऐसे, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो सुंदरता और कुरूपता के परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस स्थान पर प्रकट होते हैं और उनके पीछे लोग पत्थर मार रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कुछ साधारण नहीं है, श्रीमती राधा रानी के निजी तोते हैं, इसलिए उनका नाम है सुख। सुख मतलब तोता। राधा रानी के तोते जब इस पृथ्वी पर आए, तो राधा रानी और कृष्ण जब द्वापर युग की लीलाएं समाप्त करके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा तोते से, राधा रानी ने, कि अब मैं तो जा रही हूं, कृष्ण की कथाओं का वर्णन कौन करेगा इस संसार को, तो शुक तुम जाओ और कथाओं का वर्णन करो। तो शुक कहता है, मैंने तो सदा लीलाओं में स्मरण किया, नाम जप में रहा, मैंने तो कभी आपकी कथाओं में ध्यान ही नहीं दिया, कहां सुनूं कथा। तो वो आते हैं सुनने के लिए कथा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में कथा सुनने आते हैं शिवजी से, और शिवजी से कथा सुनकर एक स्थान है जिसका नाम है क्या, कौन बता सकते हैं? हाँ, एकाग्र कानन, एकाम्र कानन, एकाम्र कानन स्थान में उड़ीसा में आते हैं, वहां शिवजी से कथा सुनते हैं, और कथा सुनते वक्त जो महादेव हैं वो पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। इससे भी प्रमाणित होता है कि शिवजी भगवान हरि का भजन करते हैं। लोग सोचते हैं शिव तो भगवान कृष्ण विष्णु सब एक बराबर है, जो कहता एक बराबर है उसकी लुटिया तो पहले डूब गई है गंगा जी के अंदर, पहले डूबी, वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। जिसने सोचा सारे भगवान बराबर, वो गया पानी में पहले, क्योंकि भगवान बराबर नहीं होते हैं, भगवान एक होते हैं अनेक नहीं होते हैं, पिता एक होता है अनेक नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वेद व्यास वर्णन करते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में इंद्र के दुश्मनों का वध करने के लिए कभी उनके अंश कभी उनके कला अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण जब आते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ही इज द ओरिजिनल गॉड, वेद व्यास वर्णन करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम
भज गोविंदम मूढ़ मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसार खलो दुस्तारो पाही मुरारो कृपा मुरारो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
जोर से भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम एव केवलम् करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरे राम हरे राम एव केवलम् करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा Rama Rama Hare 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 Krishna Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasade Gaura Bhakta Vrinda Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol.
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बैटरी चली गई है माइक की, आपको सुनाई नहीं देगा, तो हम इसको जल्दी समाप्त करते हैं। अच्छे से करने के लिए बैटरी चार्ज नहीं है, इसको वायर से लगा सकते हैं, बिजली है यहाँ पर, इसके ऊपर खड़ा कर। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित यहाँ स्थान पे आए हैं, गंगा नदी के किनारे। सुखदेव गोस्वामी अनेक ऋषि मुनियों के साथ मिलकर के, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, आपके दर्शन मात्र से हम क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। गंगा रे परस होइबे पाश्चात पावन दर्शने पवित्र करे एई तोमार गुण। भक्त के दर्शन मात्र से पवित्र होते हैं, गंगा में तो स्पर्श करने के बाद पवित्र होते हैं। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके दर्शन मात्र से हम सभी पवित्र हो गए हैं। और सभी ने निर्वस्त्र सुखदेव गोस्वामी को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। ये जगह, इस जगह पर सुखदेव गोस्वामी आकर के बैठ गए प्रांगण में, इसी वट वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे और सभी ऋषि मुनियों ने आकर के उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे कि क्या कथा सुनाई जाएगी। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, वैसे ही धाम से, स्वर्ग से देवता उतर आए। कहा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को टेंशन है कि उनको मृत्यु होने वाली है, तो एक काम करिए, हमारे पास अमृत है, अमृत ये पी लेंगे, कथा हम सुन लेते हैं। तो परीक्षित महाराज को उन्होंने बोला, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका वर्णन, इसका अनुमति तो कौन दे सकते हैं, जिनके लिए मैंने कथा को कहने के लिए मैं आसन पर आरूढ़ हुआ हूं, बताइए आपकी क्या अनुमति है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर मुझे करोड़ों बार भी मरना पड़े तो मैं अमृत के महान, सच्चे अमृत कथा के महान अमृत के लिए इस तुच्छ स्वर्गिक अमृत को ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, भागो यहां से। और सभी स्वर्ग के देवता अपने अमृत को लेकर के इसी स्थान से, शुकताल से वापिस चले गए। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रातों तक लगातार श्रीमद भागवत कथा को सुनाया। हमें कितनी देर हुई है? 2 घंटे। 2 घंटे में बैटरी चली गई है ना, मोबाइल देख रहे हैं, टेंशन हो रही है। सोचकर देखिए, इसी मनुष्य शरीर से 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही बैठना है। मुझे बोलना है और आपको सुनना है, तैयार है? कल सुबह तक यही बैठे हैं? मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरा गला बंद हो जाएगा। हम लोग तो इंद्रिया पूर्ण है ना, सुखदेव गोस्वामी की तरह नहीं है। उन्होंने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात तक कथा सुनाते रहे। 4 दिन जब बीत गए, तब उन्होंने पूछा, प्यास लगी होगी परीक्षित जी, पानी पियेंगे? तो बोले, प्रभु पानी का नाम मत लेना, पहले ही पानी के कारण श्राप मिला था। फिर से पानी का नाम सुनते ही, अभी तो मुझे पानी फोबिया हो गया है, वाटर फोबिया। पानी सुनते ही घबराहट होती है, क्योंकि जल के कारण ही मुझे श्राप किया श्रृंगी ऋषि ने। आज फिर जल की आप बातें करेंगे तो मुझसे ये अमृत कथा छूट जाएगी। और फिर उन्होंने वहां पर अमृत कथा को प्रारंभ रखा। 4 दिन बीत जाने के बाद 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथन किया। पहले स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक 18,000 श्लोकों में सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर, हर परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन 2 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोक सुनाए सुखदेव गोस्वामी। तो कई लोग इसी बारे में कंफ्यूज रहते हैं, नैमिषारण्य, मैत्रेय मुनि, सुखदेव गोस्वामी, भागवत में कितने सारे लोग बोल रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहली कथा भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, 4 श्लोक की भागवत। ब्रह्मा जी ने उस कथा को नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वही कथा वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने वही कथा सुखदेव गोस्वामी को सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने वही कथा परीक्षित महाराज, अन्य ऋषियों को सुनाई। इस ऋषि परंपरा में एक और ऋषि थे जिनका नाम था सुत गोस्वामी, है ना। सुत गोस्वामी ने कथा को श्रवण किया, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। आशा करते हैं आप घर जाकर ये कथा सुनाएंगे। ऐसी सुत गोस्वामी यहाँ से लखनऊ के पास एक स्थान है नैमिषारण्य, जहां पर नीम के वृक्ष हैं, इसलिए स्थान का नाम है नैमिषारण्य, नीम के वृक्ष होने का। और कहते हैं ब्रह्मा जी का चक्र जो है वो भी आकर के गिरा था, जिसमें काफी सारी धुरियां थी, होता है ना, बीच में निमिष थे, स्पोक्स के कारण, निमिष के कारण स्थान को चक्र तीर्थ या फिर नैमिषारण्य कहा गया। तो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने 2nd पार्ट सुनाया है शौनक आदि ऋषियों को, लेकिन उससे पहले की प्रारंभिक श्रीमद भागवत कथा, पहली भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाई गई है। इससे पहले एक और कथा हुई है, जिस कथा में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कथा सुनाई है, क्योंकि भगवान जब बलका तीर्थ गुजरात से अपने द्वापर युग की लीलाएं समाप्त करके वापिस जा रहे थे, तो वहां पर उद्धव और मैत्रेय ऋषि विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव पूछते हैं, भगवान आपके चले जाने के बाद धर्म कहाँ रहेगा? भगवान कहते हैं, मेरे जाने के बाद में धर्म श्रीमद् भागवत में रहेगा। जो व्यक्ति भागवत पढ़ेगा सुनेगा वही धार्मिक है, जो व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ता वो अधार्मिक है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत नहीं सुनता वो अधार्मिक है। श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा वो धार्मिक है, और मैं धर्म उसी में रहूंगा। पर मैत्रेय, तुम मेरे एक प्रिय सखा है, मेरे एक प्रिय भक्त हैं विदुर, उनको जरूर मेरे कहे अनुसार सुनाइएगा। तो इसलिए मैत्रेय मुनि विदुर को ढूंढते ढूंढते यमुना नदी के किनारे वृंदावन आते हैं, और उद्धव को भगवान कहते हैं, उद्धव जी आप मेरी द्वारका की रानियों को ये भागवत कथा सुनाइएगा। तो उद्धव जी, गोवर्धन के ऊपर एक स्थान है उद्धव कुंड, वहां पर द्वारका की 16,100 रानियों को श्रीमद भागवत कथा सुनाते हैं। परीक्षित महाराज उस भागवत कथा के लिए चारों तरफ से क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, परंतु परीक्षित महाराज कहते हैं, अगर प्रभु मैं कलयुग को इसमें आने नहीं दूंगा, पर मेरी कथा कब होगी? का आपके लिए कथा कही जाएगी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। इसलिए उन दो कथाओं से विभिन्न तीसरी कथा है जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई। तो वो एक महीने चली कथा जो उद्धव जी ने सुनाई है गोवर्धन पे उनकी रानियों को, मैत्रेय मुनि ने सुनाई है विदुर महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है परीक्षित महाराज को। और यहां से सुनने के बाद सुत गोस्वामी ने जाकर नैमिषारण्य में सुनाया है शौनक ऋषियों को। तो इसलिए भागवत में सभी चरित्रों का वर्णन है, अलग अलग हो गए ना, भागवतम तो सेम है परंतु सुनाने का तरीका है। लेकिन हम जिस श्रीमद् भागवत पे चर्चा करते हैं इसमें सभी प्रसंगों को लिया गया है, सुत गोस्वामी के भी लिए गए हैं, मैत्रेय मुनि के भी लिए गए हैं, और साथ में सुत और सुखदेव गोस्वामी के भी लिए गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि लीला लिखने के बाद में लीला हुई है, लीलाएं तो पहले से ही, ऐसा तो नहीं लीला होने के बाद लिखी गई है। भागवत तो पहले से ही विराजमान था और भागवत में मैत्रेय मुनि संवाद पहले से ही था। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा था परीक्षित के साथ वो भी भगवान की लीलाओं का एक हिस्सा था। इस तरह से पूरी भागवत कथा सुनकर के 7 दिन बीत जाने पर सभी ऋषि मुनि, देखिए सुखदेव गोस्वामी कैसे विरक्त वक्ता हैं। ऐसा नहीं कथा सुनाने के बाद मैं नीचे उतर के पूछूं प्रभु जी कैसी लगी, है ना, वो विरक्ति नहीं। वो उठे और यहां से चले गए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कहां चले गए सुखदेव गोस्वामी। उनका विग्रह तो है पर सुखदेव गोस्वामी यहां से पलायन हो गए। लेकिन परीक्षित महाराज भी ज्यादा बातचीत नहीं किए किसी से, समय कम था, वो जाकर के गंगा के तट पर पुनः अपने आसन पर बैठ गए और चिंतन करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जाने से पहले आखिरी प्रश्न पूछा कि अरे प्रभु आप तो जा रहे हैं, समाप्त हो गई ये कथा, एक प्रश्न का उत्तर दो। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं क्या परीक्षित तुम्हें तक्षक से डर नहीं लग रहा है, अभी 7 दिन पूरे हो गए, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है, 7 दिन तो तुमने कथा कीर्तन में गुजार दिए, जैसे अभी होता है ना, यहाँ आ गए फोन स्विच ऑफ कर दिया, ऑफिस से छुट्टी में झूठ बोलकर आ गए। लेकिन जैसे जैसे संडे का रात होने लगती है तो भक्त बोलते हैं प्रभु जी अब तो कल से नौकरी फेस करनी पड़ेगी, क्या करें। तो डर है कथा सुनने के बाद, तक्षक नाग का डर है। तो परीक्षित कहते हैं मृत्यु का डर तो उसे होता है ना प्रभु जिसका जन्म होता है, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। बोले मतलब, बोले जन्म तो शरीर का हुआ है, मृत्यु किसकी होगी, शरीर की होगी, और मैं कौन हूँ, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। और आत्मा का न कोई मरता है न कभी वो जीती है, आत्मा सदा ही रहती है। न जायते मृयाते व कदाचिन भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यो शाश्वतो प्राणो न हन्ने हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का हनन हो जाने पर भी ये आत्मा कभी हनन नहीं होती है। न जायते मृयाते व कदाचिन, न इसका कभी जन्म है न इसका कोई मरण है, न हमारा जन्म होता है न हमारा मरण होता है। भूत्वा भविता व न भूया, न कभी थी न कभी है न कभी होंगे, हम हमेशा से थे हमेशा से हैं हमेशा ही रहेंगे। न शरीर कभी था न कभी है न कभी रहेगा। हो सकता है अभी हमें लगता है हमारा शरीर है लेकिन रोगग्रस्त रहता है, हमारा नहीं है, हमारे कहे अनुसार नहीं चलता है। अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो, और कहते हैं अजो है, अमर है हमारी आत्मा, अजर है ना, अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं, अजो नित्यो हमेशा ही रहती है। शाश्वतो पुराणो, और पुराण वर्णन करते हैं कि यह शाश्वत है, बड़ी पुराणिक है, बड़ी पुरानी है ये आत्मा, और कैसी है, ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर के हनन हो जाने पर भी आत्मा का हनन। तो परीक्षित बोले कि अभी मैं मरूंगा ही नहीं, डर तो उसे लेगा, जाकर कर बैठ गए। अभी सोच सकते थे जन्मेजय को बुलाओ, घेराबंदी करो, मैंने भागवत सुन लिया है अब मैं मरना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं कहा, तक्षक के आने के लिए इंतजार करने लगे। अभी तक्षक कैसा है, कश्यप मुनि, एक कश्यप गोत्र भी होता है ना, कश्यप ऋषि को पता चला कि यहां पर तक्षक की टेंशन चल रही है, वो बोले मैं पीछे जाके तक्षक को रोक दूंगा। बड़े भयंकर ऋषि थे, एक जल का लोटा लेकर छिड़क देंगे ना तो तक्षक को पल भर में नष्ट कर सकते हैं, ऐसे मुनि बोले। अरे सुखदेव गोस्वामी की इतनी महान कथा सुनकर परीक्षित जैसे राजा, इनको हम मरने देंगे, मैं जाता हूँ। कश्यप मुनि गए, तक्षक वहां से चला आ रहा था उड़ता हुआ, और उन्होंने कश्यप मुनि ने घेराबंदी करके रोक दिया, बोले रुको इधर। तो तक्षक बोला कौन है आप, कहा तुम्हें बहुत घमंड है अपने ऊपर, कहा हाँ क्या घमंड है, बोले मैं अपनी फुसकार से इस वृक्ष को, वट वृक्ष को क्या कर सकता हूँ, जला सकता हूँ, कहा करके दिखाओ। उसने कहा वैसे किया, पूरा वट वृक्ष पत्ते ऐसे हुए काले काले से, भयंकर दावानल लगा हो, परंतु जैसे कश्यप मुनि ने जल पात्र से जल छिड़का वो पूरा ऐसे हरा भरा हो गया, और उसमें फल आदि सब निकल गया है, पत्ते निकला है सारे। तो तक्षक बोला कि मैं परीक्षित को जलाऊंगा, ये पुनः फिर उसको जन्म दे देंगे। तो यहां से रिश्वत देना शुरू हुआ, है ना, लोग पूछते ना रिश्वत कब से शुरू हुई हिंदुस्तान में, यहां से शुरू हुआ। कश्यप मुनि को उन्होंने कहा आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सर्वोच्च कर्तव्य है दान दक्षिणा लेना और चले जाना। हम आपको दान देंगे तो आप अपना मुंह मत खोलिए और हमारे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि अगर आप तक्षक नाग को दर्शन नहीं देंगे तो परीक्षित महाराज का जो भगवान गमन है, भगवत गमन, उसकी लीला को सभी लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप भगवान की नीति के बीच में आ रहे हैं कश्यप मुनि, आप ऋषि होकर के भगवान के कहे अनुसार लीलाओं को तोड़ना चाहते हैं। आप हट जाइए मेरे मार्ग से, और उसके लिए मैं आपको दक्षिणा देता हूँ, रिश्वत देता हूँ। प्रभुपाद जी परपट में रिश्वत देते हैं, रिश्वत देता हूँ आपको, जाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। तो तक्षक नाग ने जब उनको दिया तो उन्होंने अपने हाथ से दक्षिणा ग्रहण कर हट गए, और देखते देखते ही चला आया तक्षक नाग, और ये यहाँ पर ध्यान से उत्तर मुख होकर के गंगा के किनारे तीर पर बैठे थे और स्मरण कर रहे थे, किसका? भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का। कहते हैं जिसका चिंतन करेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। कभी कभी देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति अपने गुरु का चिंतन करते करते बिल्कुल उसकी हरकतें गुरु जैसी हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप उनके शिष्य हैं, अरे आपको कैसे पता? करे आप भी वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही दिखते हैं। उदाहरण आता है, दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक किसी भी चीज का चिंतन करता है तो वैसा ही स्वरूप प्राप्त करता है जैसे एक भृंगी बहुत देर तक ध्यान करते करते, है ना, कैटरपिलर जो होता है वो एक ततैये का ध्यान करता रहता है कि कहीं ततैया मुझे खा ना जाए, है ना, वो ध्यान करता था मुझे खा ना जाए। मृत्यु के भय से इतना चिंतन करता है उस कैटरपिलर के पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लग जाता है, वो खुद भी ततैया बन जाता है। ऐसा होता है, बायोकेमिस्ट्री भी अगर देखें, बायोलॉजी भी कहती है ना, ततैया जो है कैटरपिलर से भी बन जाते हैं, उड़ने वाले ततैया, कैटरपिलर उसमें पंख निकल आते हैं। इतना चिंतन करता है उसका स्वरूप वैसा होता है। अगर हम श्री हरि का चिंतन करेंगे तो व्यक्ति को गोलोक धाम मिले ना मिले सारूप मुक्ति तो प्राप्त हो सकती है, देखते देखते चिंतन करते करते। इसीलिए भक्त में भगवान के गुण विराजमान हो जाते हैं, भगवान सहनशील हैं, भगवान सुंदर हैं, भगवान सत्यनिष्ठ हैं, भगवान आत्मसंयमी हैं, ये सारे गुण भक्त के अंदर भी आते हैं, क्योंकि वो सदा किसका चिंतन करता है? श्री हरि का चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करता है। देखते देखते जन्मेजय के परीक्षित के सामने चले आया तक्षक नाग और कहा, परीक्षित आप तैयार हो जाइए और अब मैं आपको डसने वाला हूं। जन्मेजय को उन्होंने मना कर दिया कि कोई बीच में नहीं आएगा, बस अब मैं मरूंगा। इसी स्थान पर शुकताल तीर्थ पर सभी लोग, अभी आप गंगा के किनारे जाएंगे, उसी तट पर इस वृक्ष से कथा सुनकर पैदल चलकर जाकर वहां बैठ गए। और वहां से तक्षक नाग आया, उसने जोर से फुसकार मारी और देखते देखते इतनी जोर की अग्नि निकली कि पल भर में राख हो गया पूरा परीक्षित महाराज का शरीर, पूरा शरीर तुरंत एकदम ऐसे हो गया जैसे अग्नि राख हो जाता है तुरंत, है ना, क्रिमिनेटोरियम में जैसे वो डाल देते हैं ना, फिर भी कई दिन लगते हैं आग को बुझाने में, लेकिन एक होता है मशीन में डालो तो एक मिनट में राख बनकर बॉडी आती है, इतना हाई टेम्परेचर तक्षक ने पैदा कर दिया। और तुरंत परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग दिया, लेकिन शरीर समाप्त हुआ, उनका भौतिक शरीर समाप्त हुआ, उन्होंने अमृत कथा को सुनकर अमृत प्राप्त किया। देखते देखते सभी के वैकुंठ विमान आया, सभी ऋषि, जितने भी ऋषि हैं, सभी ऋषियों ने अपनी आंखों से दृष्टिपात देखा और दृष्टिगोचर होते हुए देखा कि विमान पे उनको बिठाने के लिए आ गए हैं विष्णु लोक से विष्णु दूत और कह रहे हैं कि चलिए। और सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि विष्णु दूतों के पीछे कृष्ण भी हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज आप चलिए, मैं आपको ले जाने आया हूं अपने गोलोक धाम। और उनको बैठा करके विमान में भगवान श्री कृष्ण ने पहले परीक्षित महाराज को गले लगाया, कहा कि तुमने तो मुझे बचपन में पैदा होने से पहले दर्शन किया और तुम मुझे मरने से बाद भी दर्शन कर रहे हो, तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा जिसने जन्म लेने से पहले भी कृष्ण का दर्शन किया और जन्म समाप्त करने के बाद में, मृत्यु समाप्त करने के बाद भी कृष्ण का दर्शन किया। और इस बात को घोषित करते हुए परीक्षित को गले लगाया भगवान ने और उनको अपने धाम हाथ पकड़ कर ले गए। भगवान लिखा है ना, तो ये जो तीर्थ है ये कोई साधारण पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं है। इन कथाओं का जितना हो सके श्रवण करें, हमारे माइक आदि काम नहीं कर रहे वरना ये बहुत ही लंबी कथा है और इसमें डिटेल में हमें शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए, ये भक्त के कैसे गुण होने चाहिए। हमारी कमर सीधी नहीं होती, वृंदावन जाते हम कपड़े खरीदते रहते हैं, यहाँ आते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता, मशीनरी पर हम निर्भर होते हैं, मशीनरी थोड़ी थी। आप सोचिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं इस वट वृक्ष के नीचे हजारों लाखों ऋषि हैं, तो सुखदेव गोस्वामी की इको रहा था, इतना इको रहा था क्या? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि थे, सुत गोस्वामी के पास माइक था क्या? आजकल इतना म्यूजिकल पार्टी होता है भागवत कथा में गाना बजाना, तो कैसे सुने होंगे 88,000 ऋषि, यहाँ पे 60 लोग नहीं सुन पा रहे, कैसे सुने हूँ? तो मुझे वहां के एक संत बता रहे थे नेमिषारण्य के, कि जहां पर हमारा मन एकाग्रचित होता है उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। भीड़ में भी हमारा बच्चा गुम हो जाए और बच्चा बोले ना पापा, हमें सुनाई देता है। क्यों? हमारा मन उसको ढूंढ रहा होता है, मेरा बच्चा कहां गुम हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचे हमारे कृष्ण हमें भूल गए हैं, उस एकाग्रचित होकर के हम ध्यान सुने, आप वहां बैठे होंगे आपको कथा सुनाई देगी। और अगर आपका मन एकाग्रचित नहीं है तो माइक लगाने के बाद बड़े बड़े स्पीकर लगा के भी आपको कथा समझनी है, कहेंगे बहुत देर पकाया हमको। ऐसे परीक्षित महाराज से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से दृढ़निष्ठ भक्ति करनी चाहिए। राज्य में थे तब भी भक्ति करी, जन्म से पहले भी भक्ति करी और मृत्यु के बाद भी भक्ति करी। अमर होना यही है, असच्ची अमरता का वरदान भागवत कथा का यही है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों की परंपरा में इस कथा को सुने और जीवन में जितना हो सके अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन में अपनाएं भी इसको। तो आज कार्तिक का विशेष दिन शुक्ताल तीर्थ में, आज भाई दूज के दिन आप यहाँ पे आए, बहुत ही मुख्य है। और आप लोग गंगा जी में जाकर आचमन कर सकते हैं आज, और वहाँ पर हम लोग दीपदान करेंगे। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सभी लोग और वहाँ जाकर के हम दामोदर अष्टकम करेंगे, दीपदान करेंगे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज के समाप्त हो जाने पर उनके पुत्र जन्मेजय ने पूरे हिंदुस्तान में नाग यज्ञ किए और जगह जगह कुंड बना करके सारे सर्पों को मारना चाहा। और एक स्थान है महाराष्ट्र में नागदाह, जहाँ पर अनेक नाग मारे गए, लेकिन कहते हैं उसके कई कुंड बनाए गए और उन स्थानों में आज भी सर्प नहीं निकलते। लेकिन ऐसा मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पर सर्प निकलते हैं और वो तक्षक परंपरा के ही हैं और किसी किसी भागशाली को डसते हैं, है ना? तो ध्यान से चलिएगा। वैसे मैंने पढ़ा है कि शुक्ताल तीर्थ में सर्प होते हैं और तक्षक परंपरा के ही हैं और वो डसते हैं किसी किसी को, और अगर वो डस लेता है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो डसेगा वो कहाँ चला जाएगा? लेकिन अब आप डरते हुए जाएंगे, अब सोच लीजिए जिसका चिंतन करेंगे आप वही प्राप्त होगा। सर्प का शरीर प्राप्त होगा, डसना तो लिखा होगा तो डस ही लेगा, क्या करेंगे, है ना? तो डरिए मत, भगवान पे विश्वास रखिए, है ना? तो वो जो चाहते हैं वही होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की, श्री परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी भगवान की, शिष्य राधा गोविंद भगवान की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, शुक्ताल तीर्थ की, श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि बोल। तो चले, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, दो प्रश्न कोई भी।
जी आपने तो बताया नहीं, वो दो क्वेश्चन के आंसर तो बताया नहीं,
वो पूरा भागवत पढ़ना पड़ेगा,
थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुए नहीं
बाद में। और किसी
को
देखिए, ऐसा है कि शिव जी से ज्ञान प्राप्त किया जब उड़ीसा में, तो वहां से सुखदेव के जो ये शुक थे तोते, वहां पर शिव जी कथा सुना रहे थे किसको? पार्वती जी को। वहां चढ़ाइए, मंदिर में चढ़ाइए, मंदिर में चढ़ाइए। तो जब वो कथा सुना रहे थे तो उस समय कथा सुनाते वक्त पार्वती को शिव जी कहते हैं, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो बीच बीच में हुंकार भरना, क्योंकि मैं आंख बंद करके सुनाता हूँ। तो पार्वती बोली ठीक है, मैं भी आंख बंद करके सुनूंगी, बीच बीच में हाँ बोलती रहूंगी। दूसरा स्कंद पूरा होने पर सृष्टि लीला इतनी भयंकर सुनाई शिवजी ने कि इस पार्वती को नींद आ गई। अभी सुखदेव गोस्वामी जो शुक थे, तोते थे, वो बैठकर कथा सुन रहे थे और उन्होंने कहा अगर मैंने कथा नहीं सुनी महादेव से तो कभी मौका नहीं मिलेगा इस एकाम्र कानन में कथा सुनने का। तो तीसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक हो कौन बोलते रहे? शुक बोलता रहा तोता। 12वां स्कंद पूरा होने पर जब उन्होंने कहा राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत की जय, तो पार्वती जी की नींद खुली, बोली सृष्टि लीला के बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा अभी तक क्या कर रही थी? कहा अभी तक सो रही थी। कहा कि अच्छा आप सो गई थी, फिर ये हूं कौन कर रहा था? तो तोते ने कहा अब तो आ गया मृत्यु मेरी। वो भागे, शिव जी त्रिशूल लेके पीछे पीछे भागे। नारद जी ने कहा प्रभु किसको मारने जा रहे हो? जिसने अमर कथा सुन लिया वो क्या मरेगा? यहाँ पर वेद व्यास जी की पत्नी जबाली जो थी, जबाली की पुत्री जो थी वेद व्यास की पत्नी, जबाली उनके पिता का नाम था, ऐसी बैठी थी उनके घर में, कोई पुत्र आदि नहीं थे। वेद व्यास सोचते थे मैंने इतने पुराण आदि लिखे हैं, इनको सुनाएगा कौन, सुनेगा कौन, कौन इनकी चर्चा करेगा, एक पुत्र तो होना चाहिए। तो जबाली की पुत्री जो थी उनकी पत्नी वो बैठी थी एक दिन मुंह खोल करके और ध्यान मग्न थी ऐसे आ करके मुंह खोल के, और ये शुक उड़ता उड़ता सोच रहा था ऐसा कोई गर्भ चाहिए जहां पर भागवत कथा सुनता रहूं, क्योंकि अभी तो सुन ली पर इतना आनंद आया मन कर रहा फिर सुनूं, यही तो आनंद है रस, फिर सुनूं। कहा ठीक है फिर सुनना है, तो वेद व्यास जी जो रचे थे इनकी पत्नी के मुंह में घुस जाता हूं, इनके गर्भ में बैठ के सुनूंगा। और वो 12 वर्ष तक है ना बैठे बैठे सुनते रहे, उसके 16 वर्ष तक बैठे बैठे सुनते रहे अंदर कथा। अभी वो बोले कि गर्भ धारण तो किया मेरी पत्नी ने इतने पूजा पाठ के बाद, परंतु पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। 9 महीने बीत गए, 10 बीत गए, 12 बीत गए, ओवर पीरियड हो गया, 1 साल 2 साल 16 साल बीत गए, पुत्र ही नहीं हुआ। नारद जी आए बोले बाहर निकलो। कहा बाहर माया है। कहा फिर अंदर ही रहोगे। कहा अंदर ही रहूंगा। किसकी कथा सुनोगे अंदर बैठ के। गए मैं तो जप कर रहा हूँ, कथा का एकमात्र मैंने समझ लिया है कथा सुन के ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, जप कर रहा हूँ, बाहर आऊंगा फंस जाऊंगा, रिश्तेदारी होगी। कहा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण द्वारका से बुलाए गए, भगवान द्वारका से आए, भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा कि तुम्हें माया फंसेगी नहीं, तुम्हारे साथ माया तुम्हें फंसा ही नहीं सकेगी। कहा ठीक है प्रभु अगर आप कहते हैं तो मैं बाहर आता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर पुत्र के रूप में प्रकट हुए जो 16 साल के थे। 16 साल के प्रकट होते ही इसीलिए वस्त्र नहीं धारण किए, सीधे सीधे निकलकर जंगल चले गए। जब जंगल गए तो वेदव्यास जी बोले अरे एक तो पुत्र हुआ वो भी जंगल चला गया, कथा किसको सुनाऊंगा। तो शिष्यों को बोले भैया जाओ मेरे पुत्र को बुला के लाओ। तो जब शिष्य बुलाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो तो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो तो आत्मचिंतन करने में लगे हैं, वो तो भगवान के साकार रूप की पूजा ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा ऐसे जब शिष्यों ने रिजल्ट बताया कि भाई आपके पुत्र का ये रिजल्ट है, फेलियर है, वो तो निराकारवादी ब्रह्मवादी है, वो भक्त नहीं है। कहा उसे भक्त बनाना है जल्दी से जल्द, तो क्या करें। वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवतम के 2 श्लोकों को कोट किया। पहला उन्होंने कहा जाकर के भगवान के बारे में वर्णन करो कि भगवान कितने सुंदर हैं। तब उन्होंने बताया कि भगवान इतने सुंदर है मोर पंख धारण करते हैं, वराह पीड़म नटवर वपु, ऐसे भगवान हैं जो कि मोर की पंख को धारण करते हैं, नटवर हैं, पूरे वृंदावन में नृत्य करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस श्लोक को सुना उनको बड़ा आनंद आया, बोले अरे ऐसे भगवान से तो जुड़ना चाहिए। कीर्तन आरती हो रही है अभी, सुन नहीं भाई। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान बहुत सुंदर हैं। बोले मैं इस भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। फिर सोचे अरे पूजा करने में तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, नहलाना पड़ेगा, कपड़े पहनाने पड़ेंगे, इतना सब कौन करेगा, सरल विधि तो है नहीं, सरल विधि तो यही आंख बंद करके बैठ जाओ भगवान का चिंतन करो। कहा मैं यही करूंगा, मैं नहीं जाता। फिर दोबारा बैठ गए। फिर भक्त बोले अरे आपके पुत्र, फिर बैठ गए। कहा ठीक है आप भगवान की करुणा की भावना बताओ। तब उन्होंने जाकर बताया कि अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट लगा करके जो पूतना आई उस पर भी भगवान ने इतनी कृपा करी, उसको माँ का दर्जा दिया। ऐसा जब सुना तो उन्होंने उनकी करुणा की भावना से रोने लग गए सुखदेव गोस्वामी, और कहा मुझे ऐसे भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। और अपने पिता के पास आए और फिर उन्होंने वेद व्यास जी से दोबारा श्रीमद भागवत को इस तरह से किया। ठीक है, हरे कृष्णा। ताकि हमारे लिए भागवत, अगर वो नहीं आते तोते बनके तो हमें कैसे लीला सुनाई देती।
निराकारवादी कैसे हो गए।
निराकारवादी इसीलिए बताते हैं कि भगवान की करुणा और भगवान की सुंदरता ही हमको साकारवाद में दृढ़ बना सकती, इसलिए ये लीला करे। वरना हम लोग भी एक प्रकार से ब्रह्मवादी निराकारवादी तो है। घर में बच्चा हो तो कितना चिंतन होता है, उसका बच्चा भूखा होगा, लेकिन घर में विग्रह होते चिंतन होता है। तो हम भी तो निराकारवादी है, हम कौन सा साकारवादी है ना। तो ये सब चीजें हैं, भगवान से जब प्रेम हो जाता है तब सच्चा साकारवादी है, वरना पत्थर की पूजा करते रहते हैं। भगवान कब मानते हैं हम, प्रतिमा की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा कहाँ करते हैं। जिस दिन भगवान की पूजा करेंगे तब सच्चा साकारवादी है। ये जो सामने खड़े हैं ये मूर्ति कहते हैं हम इसको, इसीलिए तो इनके साथ इनके सामने बातें करते हैं, इन पे सिक्का में फेंक के मार देते हैं, 1 रुपए का बोल ले भगवान पे चढ़ा दिया। कभी अपने पिता पे अपने पुत्र पे ऐसे सिक्का फेंक के मारे ले 1 रुपया ले ले। जिस दिन साकारवाद असली आएगा उस दिन तो ये सब काम बंद हो जाएंगे, उस दिन तो प्रेम ही प्रेम होगा, आंसू टपकेंगे भगवान के सामने, इतना प्रेम हो जाएगा। तो वो साकारवादिता को दृढ़ता बनाने के लिए ऐसे वर्णन किया गया। ठीक, ऐसी मेरी बुद्धि कहती है, बाकी मैं जो त्रुटिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान ही नहीं हूँ, मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को इस संक्षिप्त में कथा सुना सकूँ, तो मेरे से जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करेगा। हरे कृष्णा।